પકડ જાય, છોડો 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 છોડો, મેં નહીં છોડતી, છોડતા ક્યાં આપ સુધે દર્શન દોનો કા. અચ્છા ઠીક હતા, છોડેગા કહા છોડે, બસ દોનો સામને થે કે હસ્તી પર હાથ રખા, ઉનકે નેત્ર જૈસે આયે ઓર અપ્રાપ્ય સ્વરૂપ કો નહીં કર, કભી નહીં છોડ રહા, બસ દેખ રહા, મગર આપ તો છોડેગા, છોડો તો નહીં. જિસ રૂપ કો મેને દેખા અબ ઉસકે અતિરિક્ત મેં દૂસરા રૂપ નહીં દેખના ચાહતા, ઇસલિયે મુજે જૈસે કે પહેલે જૈસે જૈસે સ્થાન થા વૈસા હી છોડ, અબ ઉસકી એસી ઈચ્છા. જિસ આંખો ને ઉનકા રૂપ દેખા, જિન કાનો ને ઉનકા શબ્દ સુના, જિન હાથો ને ઉનકે કોમલ સ્પર્શ કિયે ઓર જિનકી સુગંધ નાક ને ગ્રહણ કિયા, અબ વો દૂસરે કોઈ ચીજ કો સ્પર્શ નહીં કરના ચાહતે, યે કૃષ્ણ કી ખૂબી હૈ. और अपने आप ये ध्यान होता, गोपियों का ध्यान कृष्ण का कैसे होता था, सहज स्वभाव समाधि भी उसी को कहते हैं सहज समाधि, स्वाभाविक रूप में होना चाहिए. तो ये कैसे हैं, कहां तरंग बिंदु, ये कृष्ण का ये रूप शब्द स्पर्श इत्यादि, अमृत का सिंधु, अथा अपार अनंत
अतल
अतल, ये एक समुद्र है, उसका एक बिंदु इस सारे ब्रह्मांड को डुबा सकता है, ऐसी क्षमता उस बिंदु में है. आप इधर में हिमालय पहाड़ क्या है, फिर जगत एक जगह है, यहां पर गोपियों का, गोपियां जी जब जो है उनका चित्त उच्च गिरी के समान, पर्वत के समान, उनका पातिव्रत धर्म हिमालय से भी ऊंचा, उनका व्रत जो है ये टल नहीं सकता, अतल अथा और अनंत है, जगत का जितना भी पानी मिलकर के उसको पर्वत को नहीं डुबा सकता. कृष्ण को छोड़ करके नारायण का रूप भी गोपियों को कुछ नहीं करता, नारायण के रूप में कृष्ण बैठ गए, बंसी जरा हटा दी और गोपियां जा रही है, कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया, कोई मतलब नहीं, बल्कि उनसे पूछ लेंगे इधर कृष्ण को दे, हमारे प्यारे कृष्ण को देखा, मतलब नहीं है. जब नारायण का रूप ही उनको कुछ नहीं कर सकता तो और किसका रूप कर सकता है, इसलिए कृष्ण का एक बार जो रूप की झलक पा लेता है वो जगत में किसी भी अनित्य वस्तु का ध्यान चिंतन और अपने इंद्रियों को उसमें नहीं लगाएगा, इसलिए कोई एक बिंदु एक झलक कृष्ण का दर्शन, उनके सुगंध अंग के सुगंध का एक इतना छोटा भी अटम भी ये जगत को एकदम डुबा देगा, एक बिंदु जगत डुबा है. इधर में है पर्वत, गोपियों का मान, गोपियों का धैर्य, गोपियों का पातिव्रत धर्म, उनकी लोक लज्जा, पूजनियों के प्रति श्रद्धा, ये हिमालय की तरफ है अटल है. कृष्ण द्वारकाधीश होकर के यदि आए, चार भुजा वाले, चार भुजा दो ही भुजा वाले रहे और कहें कि मैं वसुदेव का पुत्र हूं, यदि वो कहेंगे रुक्मिणी का पुत्र हूं,
रुक्मिणी पुत्र
पति, और रोहिणी का नहीं, उनका देवकी का पुत्र हूं, गोपी का उनसे कोई भी संबंध नहीं. जब देखेंगे सिर पर
नव किशोर नटव और गोपेश बेनु,
सिर पर मोर मुकुट, हाथों में पत्नी पर बंदी है और नंद नंदन के रूप में, ग्वाल के रूप में है, नव किशोर नटवर रूप में है, तब तो इनका इनसे संबंध है. तो यहां करें कि जितनी भी ये गोपियां हैं उनका चित्त कैसा है, उच्च गिरी हिमालय से भी ऊंचा, वो किसी भी दूसरे पुरुष को देकर के उनका चित्त कुबिया को नायिका के रूप में दिया गया. क्यों लिया गया, कुब्जा का कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं भी उसका ध्यान नहीं है, भले ही काम के लोभ से हुआ, उसमें कुछ कामनाएं हैं ये बात ठीक है, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त किसी पर भी उनका चित्त कभी नहीं गया, एक सेकंड के लिए नहीं गया, कंस के यहां जाती थी, काम कर करके चली जाती, किंतु कृष्ण को एक बार जब देख लिया उनका चित्त कभी नहीं, इसलिए वो साधारणी नायिका के रूप में, इसलिए कहते हैं एक बार यदि कृष्ण को कोई देख लिया दूसरे तरफ में नहीं जाता। सीता जी ने एक बार राम को देख लिया, बस संकल्प कर लिया यही हमारे पति और उनके पति हो गए। राम ने छोड़ भी दिया किंतु उन्होंने नहीं छोड़ा, ऐसा रूप गुण इत्यादि कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं ये भले ही सब कुछ आ जाए, सुंदर से सुंदर चीज आ जाए, सुंदर सुगंध आ जाएगी, किंतु कृष्ण को ये नहीं भूल सकता। कहां डुबाए आगे पूछ था, ये एक बिंदु भी यदि उसकी झलक भी है इस उच्च गिरी को, माने गोपियों के पतिव्रत धर्म को, उनकी लोक लज्जा को, उनकी धैर्य को, जो पहाड़ के समान है, ऐसा धैर्य तमाल वृक्षों को देख करके गोपियां कृष्ण के रूप में देख करके और बेबस हो जाती है, उसका आलिंगन करती है। उद्धव जी कृष्ण जैसा रूप उनकी का उम्र, वैसे ही श्याम रूप, वैसे ही पीताम्बर, वैसे ही पहन धन सब कुछ अंगों से वही माला, वैसा ही सुगंध है, किंतु उनको देखा नहीं। ऐसी ये गोपियां हैं किंतु उस प्रेम का एक भी बिंदु यदि आ जाए झलक कृष्ण का, वो अपना शुद्ध बुद्ध खो जाती। ललिता जी मना कर रही, खबरदार आज उसे टेढ़ी बनेगा, ठीक है तुम जैसे कहते वैसे ही करो, जहीं आए तो ऐसे बैठ जाना, ठीक है बातचीत तो नहीं करेगी, नहीं करेगी, उनके तरफ में देखेगी नहीं देखेगी, हजार मनाने पर भी मत बोलना तो नहीं बोलेगी। आज जहां कृष्ण आ गए, ललिता जी करेंगे ऐसे खड़ी है शासन करें, खबरदार उसके तरफ में मत देखें। अब ये क्या कर रही है, आंखें कंसी से देखें, लग गया मत खबरदार ऐसा मत करना, उसे बात मत करना। कृष्ण जब जाने लगते हैं वहां से, जब थोड़ा सामान करने पर ये उनसे बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहती है, ललिता जी कहते हैं देखो थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ी देर के बाद मैं एक सेकंड नहीं ठहर सकती, मुझसे ये संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकती। ललिता जी हजार समझाते थक जाती है, फिर एक मिनट में इनका धैर्य चूर्ण भी चूर्ण हो जाता है। ऐसा ये कृष्ण के रूप में प्रभाव है, ऐसे ये पांचों में है, इसलिए कहते हैं कि डुबाए आगे उठी धार, डुबा करके आगे उठी धार मैंने क्या, ऐसे पर्वत को अपने अंक में ही समा लेता है और उसे पानी में डुबो करके क्या करता है, कृष्ण का रूप और ये सब चीजें उसके रग रग में समा जाता है। जैसे पहाड़ है, हिमालय पहाड़ में क्या क्या चीजें हैं, केवल पत्थर है, बाग है, बगीचा है, मट्टी है, पानी है,
बरोबर
है, पशु पक्षी कितने सब मिला करके अजय गोवर्धन पर वो
हिमालय
पहाड़ एक ही कुछ केवल पत्थर ही पत्थर है ऐसा नहीं। आप उसको यदि समस्त पर्वत को उठा लो और उस समुद्र में डाल दो तो क्या हो गया, पानी मट्टी जितनी थी गल करके क्या हो जाएगी, वो सब मिट्टी मिलकर के वो कीचड़ बन जाएगी और उसके जहां जहां कोई भी छिद्र होगा उसमें जितनी गुफाएं होंगी छिद्र होंगे सब कुछ उसमें भर जाएगा, पानी 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 और कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ही यहां पर कर रहे हैं आगे उठे और भी आगे दबाने के लिए तत्पर हो जाता है। अर्थात गोपियों के रोम रोम में, उनके भीतरी मन में उनका कुछ भी बाकी नहीं, कृष्णमय सब कुछ हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कृष्णमयी हो जाती है राधा,
कृष्णमयी
भोक्ता राधिका पर देवता
सर्वलक्ष्मी
मोहिनी परा, इसलिए कृष्णमयी का भाव ये है। कहते हैं महाप्रभु जी राधा में विभावित होकर के सखी राय रामानंद को दिशा के कृष्ण के अद्भुत इस रूप की शक्ति, रूप का प्रभाव या पांचों विषयों का जो स्वभाव है, मैं क्या कहूं, उनमें इतनी मधुरता है कि अमृत की मधुरता भी वहां पर पराभूत है, पराजित हो जाती है। कृष्ण के अंगों में जो गंध है वो कैसी है, विश्व के सारे गंधों को मात कर देता है। एक चीज है किंतु जो इसका यहां नहीं वर्णन करते। ऐसे कृष्ण भी राधा जी के सौंदर्य सुगंध और इससे एकदम पराभूत हो जाते, किंतु उसका भी वर्णन नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये राधा भाव में स्वयं आविष्ट है। इसलिए यदि ये कृष्ण सचमुच में होते ना, तो ये सब चीजों को भूल करके राधा जी का सबका ये वर्णन करके उसमें एकदम इतना ही हो रहा है, क्योंकि ये भी राधा जी के भाव है। कृष्ण वचन माधुरी, इसी प्रकार से एक अभी तमने रूप का माधुरी कहा, अब उसके वचन की माधुरी कैसी है इसका हम लोग कल वर्णन परसों करेंगे। कल
स्पष्ट नहीं कर सकते, सतत सदाशिव है, उनसे अतिक्रम जैसे विष्णु सत्वगुण का आश्रय लेकर के जगत का पालन करते हैं, किंतु सत्वगुण से प्रभावित नहीं होते, उससे अति वैसे शंकर जी भगवान के परम भक्त वे इन गुणों का स्पर्श नहीं कर उन गुणों के द्वारा इस कार्य को करा देते। कृष्ण के लीला क्षेत्र में भागवत में ऐसा वर्णन किया गया है द्वारका में और उस समय उनके पुत्र निरुद्ध कामदेव और उनको हरण करके संभ्रा और वहां पर उनकी तरफ से शंकर जी लड़ने के लिए आए और वहां छोटे और कृष्ण से उनका जीत होता है और कृष्ण उनको हरा देते हैं। ये शंकर जी उनके प्रतिकूल आचरण क्यों करते हैं, इसलिए वे इस रूप से कृष्ण की महिमा दिखलाते हैं, जैसे दुर्वासा जी भक्तों की महिमा चारों तरफ बढ़ाने के लिए अपनी अपना वो निंदा भी सज्ज कर दे भक्तों का, ये सब इसलिए शंकर जी उसी उनकी महिमा को बढ़ाया। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान हैं, शंकर जी भगवान हैं, जैसे रावण है, कुंभकर्ण, मेघनाथ, जरासंध, कंस, जितने भी अर्जुन है, भस्म, जो जो उनको ईश्वर के रूप माना है, स्वतंत्र ईश्वर के रूप, उन सब व्यक्ति के लिए इन्हें शंकर को वैसे नहीं मान करते, कृष्ण का अनुगामी और उनकी इच्छा को पालन करने वाले ये शंकर जी एक रूप में कर सकते, तब उनकी पूजा हम कर सकते। जब अंतरिक्ष वर्ष दे चार हाथ लगाकर और कृष्ण से संदेश भेजा, कृष्ण को संदेश भेजा, तुम चार हाथ उतार दो और नहीं तो तुम उसे युद्ध करने के लिए तैयार हो, मैं युद्ध भूमि में तुम्हारे हाथों को काट दूंगा। उस समय में कृष्ण हंसने लगे और जब पंतों की याद लोग अब हंसने लगे और कृष्ण ने कहा तो ठीक है, संग्राम भी दिखलाएगा जिस कैसे ये चतुर्थ और युद्ध हुआ, उसमें उसका मित्र ये शंकर जी उपस्थित थे, तो ये विरोधी उसका भी ये संग लेते हैं, आराम का विरोधी राम उसका भी संग लेते हैं, ये किसकी वो संहारकारी शक्ति है ना, इन्हें यदि वैसा नहीं करेंगे तो इनका संहार नहीं होगा, इसे ऐसा करा देते मन मोटा जी उनके विरोधी हैं, उनके विरोधी नहीं, जैसे कृष्ण पितामह पांडवों के विरोधी नहीं थे, वो केवल उन्हों का संहार कराने के लिए यदि वो उनका पक्ष नहीं ग्रहण करते तो वो युद्ध ही नहीं होता, क्योंकि युद्ध का सब कुछ प्रेरणा ये उनसे थी, कृष्ण पितामह वो यदि नहीं युद्ध करते हैं तो ये महाभारत युद्ध नहीं होगा और तब फिर सबका ध्वंस होगा नहीं, इसलिए जानबूझ करके पिता ने भगवान की स्तुति के लिए उनका संहार करने के लिए उनका पक्ष उपस्थित दिखाए, किंतु सब समय ही वो चाहते थे कि पांडवों की विजय। जब पहले महाभारत युद्ध आरंभ हुआ तो उन्होंने अर्जुन युधिष्ठिर ने उनको प्रणाम किया बाण से, बाण मार्ग के चरण तुम्हारी विजय हो और यदि ऐसा नहीं करता तो तुम्हों का युद्ध में पराजय होगा, सब समय किसी न किसी रूप अपने मरने का कारण बदला करके और वैसा ही अपने आप ज्ञान की करके निश्चय संकल्प ज्ञान की उत्पत्ति, उनके प्रतिपक्ष में योगदान करके और उनको उत्साहित करके और कृष्ण से लड़ते हैं और हारते भी हैं, आज जाता करते हैं और भी उनका इसलिए शंकर जी भगवान के प्रेम जो और दूसरे काम नहीं कर सकते, मायावाद का प्रचार दूसरा नहीं कर सकता कृष्ण भक्ति के प्रेम, किंतु भगवान के आदेश से वो ऐसा भी करते प्रचंड बहुत काल मैंने तो काशी ने उसके क्षेत्र में उन्होंने उनके तरफ से लड़ा ताकि राज को उन्होंने मारा, उसका बेटा आया पौंड्री को मारा, काशी नरेश को मारा, उसका बेटा लड़ने के उसको भी मारा और काशी को जलाया। शंकर जी वहां से ये दिखलाया, देखो मैं जिसको तुम लोग ईश्वर कहा था मैं भी उनसे हाथ करके यहां से भाग जा रहा हूं, काशी को छोड़ रहा हूं, काशी में जला दी उन्होंने, मेरे कभी भी मुझे स्वतंत्र ईश्वर नहीं मान करके उनका परम भक्त हूं। और भी शंकर के ऐसे चरित्र हैं और कौन भस्माचूर्ण में भी ऐसे ही भस्माचूर्ण को स्वतंत्र ईश्वर मानकर और उनकी पूजा करके उनसे बर लिया और बर लेकर के उन्हीं की परीक्षा करने गए। अंत में भगवान ने आकर के पटु उद्धार कर कहा कि तुम किसको कहां किसको खोज रहा है, मैं शंकर किस लिए बर दिया है, मैं परीक्षा करूंगा उसे सिर पर हाथ देकर जलता है उसके मनोभाव को भगवान समझ जलता है जिसे तुम ऐसे देखो तो अरे उसकी बात कभी सच होती है, तुम अपनी हाथ देकर के देखो तो अपने सिर पर है अपने हाथ और जेल में हाथ दिया। यहां पर भी उन्होंने यही देखा कि हमारे प्रभु भगवान
रावण को बोल दिया तो
इस तरह से सभी भगवान के विजय पुष्टि के लिए उन्होंने इस प्रकार से किए, इसलिए शंकर को उनके रूप में सब समय देखा जाए दूसरे रूप से नहीं, सब समय भगवान के भक्त, इसीलिए रघुनाथ दास को स्वामी ने भी स्वभावली में इसका वर्णन किया है। गोपियां जिनसे भर पाकर के और कृष्ण में वैसा अनुराग प्राप्त कर, इसलिए सनातन गोस्वामी ने रामानुज इत्यादि का विचार देकर के उन्होंने हरिभक्ति कलाश में दिया कि रामानुज संप्रदाय के लोग दक्ष का वह भर वह विषम पात जानकर शंकर के प्रति जो तुम्हारी उपासना करेगा वो पाखंड होगा और किसी ने भी ऐसा ये किया, इसे रामानुज के लोग ऐसे हैं, रामानुज का स्पष्ट आदेश है यदि तुम्हारे घर में आग भी लग जाए और पास में शिव मंदिर है मत जाओ वहां, जल करके मत जाना चाहे किंतु शिव मंदिर में मन नहीं जाना है, शिव जी का प्रसाद नहीं लेना है, उनका भस्म लेना नहीं है, ये भक्ति का विरोध है, इसे रामानुज वाले नहीं जाते। एक बार रामानुज को जगन्नाथ जी ने वहां से उठाकर फेंक दिया सैकड़ों मील दूर, वो जगन्नाथ जी के मंदिर के पुजारियों को पान चुगाते हुए देखकर और आचारहीन समझकर उनको सेवा बंद कर दिया कि आप लोग कोई भी यहां जगन्नाथपुरी का कोई भी ब्राह्मण उनकी पूजा नहीं करेगा, उन्हें सदाचार नहीं है। तो वो लोग उपवास रख करके धारणा दे दिया जगन्नाथ जी, तब वो हमारी रोजी रोटी ये छीन लिया, अब हम भूखों आपके हैं मरे। तराती रात में जगन्नाथ जी ने उनकी खाट समेत पलंग समेत उठाकर लीलो धूप से तब वो चले गए वहां पर देख दिया कहा वहां गए तो देखा कि शिव जी वहां पर पूजा शिव जी का मंदिर उन्होंने भगवान के पास प्रभाव हमको फेंका भी तो हमको सीधे मंदिर में फेंका, इसे तो मेरा मर जाना अच्छा था। आकाशवाणी हुई कि जाकर के देखो ये मैं कूर्म रूप हूँ, संकट विकास ये शिवलिंग नहीं है। तो जाकर के उन्होंने देखा कि अरे ये तो शिवलिंग नहीं है, ये तो भगवान कूर्मदेव की मूर्ति है। और तब से वह कूर्म मंदिर के रूप में ऊपर गौड़ी वैष्णव का क्या है, वो कहते हैं कि शंकर परम भक्त है, वैष्णवानंद जथा संभव इनका सदा आदर करना चाहिए। इसलिए कोई कोई वैष्णव आयकंसकता के फैसले शंकर की उपासना नहीं करते, इसलिए चतुर्दशी के दिन वो कोई कोई नहीं भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि कोई करे और न करे, किंतु उनकी अवज्ञा नहीं हुई इसके लिए। अवज्ञा करके कहता है कि इससे भक्ति की हानि होगी, इसलिए शंकर की पूजा नहीं करेंगे, नहीं तो हम पाषंड हो जाएंगे। तो सचमुच में वो पाषंड हो जाएगा नहीं करने से। इसलिए सनातन गोस्वामी ने क्या किया, रूप गोस्वामी ने क्या किया, हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या किया, हमारे गोस्वामी लोगों ने क्या किया, इस चीज को देखने से पहले विशेषकर हरिभक्ति विलास को देखने वाले सनातन गोस्वामी जी ने क्या किया। जहां भी वो ब्रज में रहते थे, वृंदावन में रहते, सब समय गोपेश्वर महादेव के पास थे। राजगोपत में रहते थे सकलेश्वर, कामवन में रहते तो कामेश्वर, इस तरह से जहां भी रहते शंकर के बिना वो नहीं रहते। परिस्थिति इसलिए उन्होंने लिखा कि अवस्था एवं कर सकते कति के लिए उपवास करना, जो प्रेम चाहते हैं उनके लिए आप ऐच्छिक रक्त लेकर के भी अंत में अपनी पूजा नहीं दे लिखा उनका कथन, क्योंकि शंकर जी पार्वती जी को नारद जी को या संत कृष्ण की गोपुरी जो लीलाएं हैं उनका उन्होंने वर्णन किया। यदि वो नहीं जानते इस शब्दों को और नहीं दे सकते तो वैष्णव लोग क्यों उनको जैसे सनातन गोस्वामी ने कुछ दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने कुछ दिया। इसलिए वैष्णव लोग शंकर के बाहरी रूप की उपासना न करके आंतरिक रूप का जो स्वरूप है उनकी प्रति आदर कभी भी अवज्ञा न हो। उस दिन दूसरे दिन रघुनाथ दास गोस्वामी का तीनों का शिरोभाव रघुनाथ दास गोस्वामी का पसंद पंचमी जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज का, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज का क्या परिचय है लोगों के, लोकनाथ दास गोस्वामी, इसके बाद में गौतम ठाकुर और उसी की परंपरा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ जैसी परंपरा में उद्धव दास, उसके बाद जयभूषण आए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ही एक शिष्य थे उद्धव दास या उद्धव, वो उनके जूनियर थे बलदेव, इन दोनों को ही उन्होंने भेजा था कलकत्ता की गति, उसमें तत्व का विचार हुआ है। और उन्होंने रामानंदी संप्रदाय के साधुओं को, निम्बार्क संप्रदाय के साधुओं को सबको परास्त किया और उनकी विजय हुई और उसी ने ब्रह्मसूत्र का गोविंद भाष्य उन्होंने प्रकाश किया, इसलिए उनसे प्रेरणा देकर के कराया था वो, इसलिए उनका नाम, उसका नाम हुआ गोविंद भाष्य, गोविंद ने जो भाष्य किया। जैसे मदन मोहन लिखाए मोरे खाते करी लिखाए, ये चैतन्य चेतावनी के लिए कह रहे हैं कि हाथ पकड़ करके हमारा और ये चैतन्य चेतावनी को हमसे लिखवा रहे हैं मदन मोहन। तो ये बात पूछे कि सच सच तरह से है। बलदेव विद्याभूषण का हाथ पकड़ करके गोविंद जी ने लिखवाया और गोविंद की महिमा उसे प्रकाशित हुई कि उसको गोविंद भाष्य पत्र। तो इनके साथ में वो भी गए थे और कृष्णा चौवर्ती साथ से गए थे। तो गुरु परंपरा में भागवत परंपरा और शिष्य परंपरा तथा पंचरात्रि शिष्य परंपरा ये दोनों दिखाई जाती है। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि हमारे प्रभुपाद जी का भक्ति सिद्धांत सरस्वती का यह विचार पंचरात्रि दीक्षा परंपरा ऊपर की है, इसको फुल बुद्धि वाले बहुत अधिक महत्व देते हैं और सूक्ष्म बुद्धि वाले वो लोग भागवत परंपरा पर अधिक जोर देते हैं। भागवत परंपरा में दीक्षा दिव्य ज्ञान के साथ साथ में हमारी उपासना की जो पद्धति है उसकी वो शिक्षा मिलती है, केवल शिष्य परंपरा में वो नहीं संभव बनती। जिस गुरु को चैतन्य महाप्रभु जी के विचारधारा को ही पता नहीं है, कुछ आए हैं मंत्र ले लिया उसे कोई शिक्षा नहीं दी, तो ऐसा जो गुरु है अपने शिष्य को ये सब चीजें नहीं देते। ये केवल भागवत परंपरा में, भागवत का परंपरा मैंने क्या, कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ में जो लीलाएं थी, ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, ब्रजवासियों में से सुबल सिद्धाम इत्यादि का कृष्ण के प्रति जो सख्त भाव था, यशोदा मैया नंद बाबा का जो वात्सल्य भाव था, गोपियों का कृष्ण के प्रति मधुर भाव, प्रियतम का जो भाव था, उसका स्मरण चिंतन और अनुशीलन ये भाव था। उस परंपरा को निभाने के लिए प्रारंभिक रूप में शिक्षा इत्यादि की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षा परंपरा की श्रेष्ठता होती पानी अनुष्ठान की, यज्ञ कर दिया, काम में मंत्र दे दिया, हो गया, और जो नहीं करेगा उसको ये परंपरा नहीं आएगी। यदि ऐसी बात हो तो राय रामानंद कौन से परंपरा में थे, माधवेंद्रपुरी से उनका क्या संपर्क था, ठाकुर स्वरूप दामोदर का उनसे क्या संबंध था, तो परंपरा से क्या लेना देना था। वो तो मन काशी में मायावादी एक सन्यासी से उन्होंने उनसे दीक्षा और सन्यास। तो दीक्षा की परंपरा में शिष्य परंपरा में नहीं आ सकते, तो फिर उनको भक्ति नहीं होनी चाहिए थी। किंतु महाप्रभु जितने अनुसरण है उसमें स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद ये दो प्रधान है और दोनों हमारी शिष्य परंपरा में नहीं है किंतु भागवत परंपरा में है। इस परंपरा किसके वो शिष्य हैं, महाप्रभु जिनके शिष्य हैं उनमें से किसी के एक साथ में उनका संबंध है शिक्षा इत्यादि का, राय रामानंद जी का किसी नहीं मान है, यही तो पता ही नहीं। किंतु भागवत परंपरा में है, ये कैसे आएंगे, महाप्रभु के बाद महाप्रभु के शिष्य में स्वरूप दामोदर राय रामानंद, फिर उनके बाद में आएंगे सनातन गोस्वामी, ये भागवत परंपरा। महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी स्वरूप गोस्वामी को शिक्षा नहीं दी, इससे तो किसी के थे जो उनका कहीं उल्लेख ही नहीं मिलता है। नवदीप के किसी भट्टाचार्य वैष्णव थे उनके, इसलिए पिछले प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती बुलाया कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण और उसके बाद में धरदास और मधुसूदन बाबा जी और उसके बाद में लिया भक्तिविनोद ठाकुर को जगन्नाथ दास और जगन्नाथ जी के बाद में भक्तिविनोद ठाकुर। यहाँ पर अधिकांश लोगों का दीक्षा का संबंध नहीं है किंतु प्रधान यही है जिससे ये पद्धति मिलती है, जिससे कि उस वृंदावन के राज्य में पहुंचा जाता है। केवल कोई गुरु को कुछ ज्ञान ही नहीं है इस तत्व का, और जैसे गुरु हैं जिनको भक्ति से कोई संबंध नहीं, ऊपर से दीक्षा ले लिया, वो भी करते हैं मंत्र की नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग हैं और उनका कोई परंपरा में कोई आकर उनसे कहते गोपाल, किंतु भागवत परंपरा में वो आते यदि कोई योग्य हो, जैसे मध्वाचार्य व्यास की परंपरा है, समय का कोई काल का कोई नियंत्रण नहीं, वो कहते हैं कि हमारे गुरु व्यास किसी तरह जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जिसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ये परंपरा में बलदेव गुरु के बाद में यद्यपि उनके गुरु थे हाँ समानंद प्रभु के शिष्य परंपरा में रसिकानंद जी के शिष्य थे शिष्य काश वहां पर जगन्नाथपुरी में दामोदर दास उसे उन्होंने शिक्षा दी, किंतु इसका वर्णन उन्होंने कहीं अपने गुरु परंपरा में या कहीं भी नहीं किया, बल्कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को बलदेव विद्या बलदेव विद्याभूषण ने दिया और गुरु का वो खुद परिचय नहीं, ऐसा परिचय मिलता है इसलिए हम लोग कह देते हैं, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती को सद अनुसार भाव से उनको ग्रहण किया और उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं उनको असल में यही जिनके हम जिनकी हम शिक्षाओं को संपूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं और अपने जीवन चरित्र में मानते हैं, हृदय अपने आप उसके प्रति अनुरक्त हो जाता है, यही है शिक्षक की कथा, यही भागवत ये भागवत परंपरा ऐसी चीज है जो शिक्षा परंपरा वाली जो शिष्य परंपरा है उसको क्रोड़ीभूत करके रखता है, उसका अनादर नहीं करता, उसका आदर करते हुए यथा जो उसके सम्मान देते हुए और ये भागवत इस तरह से बलते जगन्नाथ दास महाराज हम लोगों के विष्णु लोकनाथ चैतन्य महाप्रभु और उसके बाद में रूप सनातन उसी को समझ लीजिए, रूप लोकनाथ गोस्वामी उससे नरोत्तम ठाकुर जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बाद में बल्कि विद्याभूषण और उन्हीं की परंपरा में जगन्नाथ दास महाराज भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य परंपरा में नहीं है, शिष्य नहीं पंचरात्रि की दीक्षा उनसे नहीं दी, पंचरात्रि की दीक्षा नहीं क्या शिक्षित को थोड़ा सा समझो बहुत ही ज्ञान कर सकती है तत्व तो हमारे ये बक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य गोपाल गुरु और उनके शिष्य ध्यान कर उन्होंने दो प्रकार की पद्धति दी थी जिसमें स्वरूप दामोदर राय रामानंद और उनकी परंपरा में स्वरूप दामोदर उनके बाद में रूप सनातन उनकी परंपरा में जो चीजें आ रही थी इसमें श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन अर्चन बंधन दासा निवेदन और उसमें भी पांच चीजें साधु संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास के मुद्दे श्रद्धा सफल साधन ये पांच अंग प्रधान है, यदि कोई थोड़ा सा भी इसका पालन करे साधु संघ नाम कीर्तन श्रीमद भागवत श्रवण और मथुरा वास की मूर्ति किंतु इसमें प्रधान क्या है साधु संघ, साधु संघ में नाम, साधु संघ में भागवत श्रवण, साधु संघ में मथुरा वास और साधु संघ में ही उसी में गोपना वो है बाहरी अंग के अनुष्ठान अर्चन पद्धति पंचरात्र विधान मंदिर की स्थापना उनका घंटा लेकर के विधि के साथ यदि कोई इसी में लग जाए यदि कोई वक्त अर्चन नहीं तो न जाने कितने जन्म बीत जाएंगे उससे चित्त शोधन भी नहीं होता है तो नहीं होता किंतु साधु संघ इसलिए हमारे गोस्वामी ने अर्जुन की तरफ में जो मध्यमाधिकारी गए तो उनको सर में नहीं झुकने देने का परामर्श दिया। कले और कनिष्ठ अधिकारी उसको कर अपने चित्त को शोधन कर सके नियम पूर्वक उसमें लगे तब होते 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 सब साधु संघ में सब कुछ इसे दो पद्धति उन्होंने एक हुआ गुरु का मंत्र गौरांग का मंत्र नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर पंडित के कृष्ण का मंत्र राधा जी का मंत्र अष्ट सखियों के मंत्र विरला जी का मंत्र यमुना जी का मंत्र जितने कृष्ण के परिकर परिचर्याए हैं उन सबका अलग अलग मंत्र देकर के उनके पूजन की बुद्धि सिखाई। ऐसी विधि बनेंगे सारा दिन भी पूजा करेंगे तो उतना कहते आपके गुरु जी ने राधा जी का मंत्र दिया है इसमें राधा जी का कहा जो कहते हैं कि इसलिए हमको राधा जी का मंत्र दीजिए राधा जी की गायत्री दीजिए राधा गायत्री राधा जी का मंत्र तो विशाखा का मंत्र दिया गया है ललिता जी का मंत्र ये सब उसमें है इसमें ध्यानचंद और गोपाल गुरु जी की पद्धति में इससे ये क्या चीजें हैं उसके चित्त को किसी प्रकार से बोल सकते उसमें कृष्ण के स्मरण लीला में मंत्र की आवश्यकता उतनी है कि नहीं अष्टकालीन लीला में मंत्र कहाँ है कहीं भी कोई मंत्र नहीं एकदम स्मरण एक पर एक दूसरी बात लगातार कंटिन्यूएशन उसमें माला के रूप में वो लीलाएं आती जाती बल्कि मंत्र करने से होगा क्या कृष्ण के लिए नमस्कार ओम कृष्णाय तब तक कृष्ण के प्रति स्वाहा भी कर रहे हैं अर्पण कर रहे हैं तो अभी कृष्ण के प्रति वो नरलीला की भावना के रूप में भावना कहां से आएगी ये तो ऐश्वर्य का भाव हो गया इसलिए ऐश्वर्य भाव लाने वाला है क्या मंत्र है वो ऐश्वर्य भाव अपने को बहुत सूक्ष्म मान करके एक पद्धति मान करके उनका अर्चन करते और उसमें या तो कृष्ण के बराबर नहीं कृष्ण से बड़े भक्त लोग रहते हैं जो सोचा कि उन कृष्ण को प्रणाम करके उनकी सेवा करेंगे ये कभी बल्कि कृष्ण प्रणाम करें कृष्ण भी प्रणाम नहीं करता वो दौड़ता हुआ हंसता हुआ करके गोदी में गिर जाएगा बस यही उसका प्रणाम आज जो सोचा ये स्तन प्रणाम मान कराकर कृष्ण के उलझे हुए बालों को सुझाएगी मतलब सुनेगी और प्यार करते ही आंखों से दो आंखों तक उठा दी ये पर ब्रह्म कोटि कोटि प्रणामों से भी अधिक इसलिए अष्टकाली लीला में मंत्र का कोई भी कहीं भी कोई उल्लेख नहीं तो वो भाव खत्म हो जाएगा ऐश्वर्य बुद्धि आ जाएगी और फिर उससे क्या होगा ऐश्वर्य सुशील प्रेम शिथिल प्रेम नहीं ऐश्वर्य के द्वारा जो प्रेम शिथिल हो जाता है इसलिए अर्जुन की प्रधानता उन्होंने साधारण लोगों के लिए कहा एकदम जितने भी हैं सबके यमुना जी का मंत्र राधा जी का ललिता विशाखा सुभद्रा राधा जी का भी कृष्ण का भी गुरु का मंत्र गायत्री मंत्र महाप्रभु जी का मंत्र माने जितने लाखों मंत्र हैं चित्त संयोग करते 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 मंत्रित हो जाए इसलिए भागवत परंपरा पहले के पहले ये यदि ये करने हैं यदि कोई करता ठीक है किंतु यदि साधु संघ हो जाए तो फिर इनकी कुछ वो भागवत परंपरा में आकर के कुछ लीला स्मरण में भागवत में गोपियों का या ब्रजवासियों का कहीं कृष्ण के प्रति कोई प्रणाम मंत्र है यशोदा ने भी स्वरूप भी देखा किंतु प्रणाम तो नहीं किया उन्होंने सोचा कि कोई जानने का काम है किसी की नजर लग गई इसलिए एक तो अर्चन पद्धति है किसी को पता है पांचरात्रि विग्रह के लिए उन्होंने बतलाया सनातन गोस्वामी ने उन्होंने सालग्राम शिला को ही भगवान मान लिया और बक्से में बंद करके ब्राह्मण उनको पूजा करने के बाद में ले लिया तो हाय है करने अरे हमारे ठाकुर जी को ये बक्से में बंद करें उनको गर्मी लग रही होगी बड़ी भूख लगी होगी अब इसके बाद में फिर उन्मुक्त रूप में उनको देखा वहां दक्षिण प्रदेश में त्रिवेंद्रम में देखा कि वो दस बार पार्थिव पूजन और भोजन इत्यादि किया जा रहा है और वो राज्य भी उनका है, पक्ष में बंद नहीं होती। किंतु देखा जी संध्या के बाद उनका कबाड़ बंद हो जाता है, बड़े दुखी हो, उनसे तृप्ति नहीं हुई उस अर्चन से। इसके बाद में तो फिर कहां गए, जगन्नाथ जी ने जगन्नाथ जी को देख करके बड़े प्रसन्न भय। यहां पर झूठा फूटा का कोई चीज का विचार नहीं है और सोचा जे प्रभु मैं आपका सेवक बन जाऊं, राजा मर गया कुछ दिनों के बाद इन्हीं को राजा कोशिश कर दिया और पूजा करने लगे। कुछ दिन करते 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 इनका मन भर गया जब तो वो पूजा करने में भी त्रुटि देखने लगे। क्या वो जो दुष्ट होता है कितने के लिए विरह होता है, पुलिस चारों तरफ में लग जाती है और उनके बगीचे सब नष्ट हो जाते हैं घोड़े के रोकने से, बड़ा दुख। सोचा कि यहां पर भजन नहीं होगा, अब इसे उन्मुक्त वायु में भी जाए तो कहां गए, इंद्रलोक में किसको देखा, वामदेव। वो बातचीत भी करते हैं, यहां वाले सब बातचीत नहीं कर रहे थे। इसके बाद में ब्रह्मलोक में गए, फिर वहां से ऊपर उठ गए शिवलोक में गए, नारायण के यहां गए। कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मनोवांछित स्थिति प्राप्त कर। और कुछ दिनों के बाद में जब गोपाल का मंत्र करते तो फिर वो भी उठ जाते, उनको वहां पर भी ये बुरा लगने लगा। इसके बाद में राम के यहां गए और भी प्रसन्न हुआ, अब राम कृष्ण तरफ से कहीं जाना ही नहीं। कुछ दिन का बाद मन भर गया, वहां पर कृष्ण के साथ में गैया चरानी इत्यादि का कोई भाव नहीं और सखा को सखा मेरे सखा ये सखा ये नहीं करते। द्वारका जी के यहां गए, आप कहा जाओ तो कृष्ण मिल गए, आप कहीं नहीं जाना। आपको दोनों के बाद में वहां पर भी उनको बंधन दिखाई दे। इसके बाद में ब्रज में जब गए कृष्ण ने उनको अंक से भर दिया, पूर्ण प्रेम दिखलाया। ये पद्धति कैसी हुई, पहले अर्चन को छोड़ करके देखो ये कैसे 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 कैसे। इसलिए गोपाल गुरु और ध्यान दो पद्धति, एक सर्व दामोदर वाली है राय रामानंद और सनातन गोस्वामी की धारा वाली और एक अर्चन की पद्धति है पंचरात्रि इच्छा इत्यादि, दोनों ने दिखता है। दो प्रकार की ये धारा है, एक पहले के प्रति आदर दिखलाते हुए हमको प्रवेश करना है महाप्रभु जी के विचारधारा में, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कोई कोई सौभाग्य नहीं को ये सब चीजें। यदि रूप सनातन जी या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दिन भर रात भर भगवत चिंता में डूबे रह गए, प्रज्ञा कहां समय है उनको, उनके गोपाल की जो सेवा देखी जाती है या मदन मोहन की जो सेवा देखी जाती है, उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं मदन मोहन जी। गोकुलानंद जी का भी ऐसा ही, उनकी सेवा पूजा कुछ दूसरे प्रकार की प्रजरती उसी बना के इन सब चीजों को विचार करके। भक्ति विनोद ठाकुर जी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के और उनकी जितनी भी उपासना की पद्धति सबको उन्होंने उनसे दिया जगन्नाथ दास बाबा जी। सजीव बाबा जी इन चीजों को धारण नहीं करके वो कहते हैं भाई उनके गुरु कैसे हुए, वो स्कूल धरती वो उनको समझ नहीं पाते गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी का जितने उपासना के विचार हैं विशेषकर जैव धर्म में जो कुछ देखा जाता है ये सब उनके लिए और जगत में महाप्रभु जी के विचारधारा को पुनः स्थापित, जो भक्ति गंगा अभिरति रुद्ध हो चुकी थी उसको पुनः ये प्रवाहित करने वाले ये सब संगोष्ठानी जो ये भक्ति विनोद इसलिए इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी उनको बना करके हम लोगों को हम लोग आज उनके चरणों में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों पर कृपा करें, हम इन चीजों को समझ करके भगवान के विशुद्ध प्रेममयी भक्ति की तरफ में अग्रह हो। आगे करता है मंशा कल्प चौधर्य कृपा पतिता नाम पाओ वही।